आदरणीय भाई साहब हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सब एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ रक्षक, खुदाई खिदमतगार, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी कहते हैं, सतयुग में देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते। पांच तत्व सतोप्रधान शुद्ध अन्न सात्विक अन्न होगा। आने वाले सतयुग के संस्कार हम संगम युग से ही लेकर जाएंगे। पुष्पक विमान वहां कौन बनाएंगे? जो एरोप्लेन बनाने की प्रक्रिया में रहे होंगे। आने वाले समय में शुद्ध सात्विक अन्न की प्राप्ति हो, उसके लिए आप सात्विक जैविक यौगिक खेती के प्राप्ति के लिए किसानों को ट्रेनिंग देकर आने वाली दुनिया सतयुगी दुनिया के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आदरणीय भाई सब, कृषि विभाग और ग्राम विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। राज ऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अनेकों अभियानों को कुशल रूप से संचालित किया है। मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, फोटो विभाग और स्टेशनरी का भी कार्य विभाग आपकी देखरेख में होता है। पत्र पुष्प आप ही प्रकाशित करते दादी जी और दीदी की तरफ से। दीदी का मास चल रहा है, आपने बड़ी दीदी की पालना ली है। आपके द्वारा टॉक शो, अनमोल रतन, अव्यक्त इशारे टीवी कार्यक्रम में आते रहते हैं। भारत में ही नहीं, आप सेवा अर्थ विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप यूपी कानपुर से हैं, 1971 से आप ज्ञान में हैं, 1972 से आप मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सिंधी भाषा सीखी, 1976 में हिंदी मुरली टाइप करते, मुरली में धारणा, वरदान, स्लोगन आप ही सेट करते हैं। आपको बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अव्यक्त मुरली सुनने के साथ साथ आप टाइप करके कोने कोने में पहुंचा देते हैं, ये आपका योगदान रहा है। आपकी क्लासेस सुन करके ब्रह्मावत्स आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। ज्ञान चिंतन जिनका आभूषण है, विनम्रता जिसकी शान है, सेवा जिसका कर्म है, वो ईश्वर की पहचान है। जिनकी दृष्टि में हर एक आत्मा ज्योति समान है, जिनसे प्रकाशित होता जग का हर इंसान है, ऐसे हमारे भाई सब में अनेक गुण और शक्तियां हम सब अनुभव करते हैं। आप में स्नेही, सहयोग, विनम्रता, मधुरता, शालीनता, सादगी, आप अनेका अनेक गुणों से भरपूर हैं। आज का आपका विषय है संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट। अभी ट्रांसलेशन के लिए भी आइए। शशि बेन कुछ आपको कहना चाहती हैं एफएम के लिए?
ओम शांति। तेलुगु एफएम फ्रीक्वेंसी 106.5 106.5। అయితే చాలా మందికి ఎఫ్ఎం ఇచ్చాము, కొంతమందికి హెడ్ ఫోన్స్ ఇచ్చాము. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు అన్ని క్లాస్ తర్వాత అక్కీ క్లాస్ కూడా ఉంది, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరెవరైతే ఎఫ్ఎంలు తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ అనకాపల్లి భాను అక్కీకి అవన్నీ అప్పచెప్పి వెళ్ళాలి. ఇంకొకటి, ఎవరెవరికైతే ఎఫ్ఎంలు రాలేదో, ఇంకా వస్తున్నాయి, బాబా ఇస్తారు, ఈ క్లాస్ కాకపోయినా వస్తాయి, సో ఉండండి, వస్తాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ 106.5. ఎవరైనా మీ ఫోనుల్లో మీరు సెట్ చేసుకోగలిగితే సెట్ చేసుకోండి, లేదంటే వెనకాల అన్నయ్యలు ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ అనే వాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే సెట్ చేస్తారు. ఓం శాంతి. జరుగుతుంది, మీకు వినిపిస్తుంది.
ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. ఆప్ సభీ సంతుష్టమణియా బెట్టే హోనా, సంతుష్టమణి హో. బ్రాహ్మణ జీవన్ మే సంతుష్టతా హమ్ సబ్ కా ఏక్ सुंदर श्रृंगार है. बाबा मिला, इतना बड़ा खजाना मिला, पिता के रूप में पालना मिली, शिक्षक के रूप में इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, और सतगुरु बाबा ने हम सब के ऊपर कितनी कृपा की है, जो अनेक वरदानों से श्रेष्ठ मत से हम सबका मार्गदर्शन किया है। आज गुरु पूर्णिमा है और हम सब सतगुरु पोत्रे बाबा की प्यार भरी पालना में पल रहे हैं और जिनको इतनी ऊंची श्रेष्ठ पालना मिलती है उनका भाग्य कितना ऊंचा होगा। इसलिए किसी से पूछें आप संतुष्ट हो, बाबा कहता ये भी उसकी इंसल्ट है। अगर ये संतुष्ट नहीं होंगे तो कौन संतुष्ट होगा। इतनी बड़ी दुनिया में बाबा ने जिन्हें सेलेक्ट किया, जिसने बाबा को पहचाना, बाबा को पहचान करके मेरा बाबा कहा और बाबा ने उसको सब प्रकार से मालामाल कर दिया, भरपूर कर दिया। जहाँ भरपूरता है, संपन्नता है, वहाँ ही संतुष्टता है। अगर हम ऐसे कहें हम तो हैं ही संतुष्ट, जो है जितना है, तो बाबा कहता है ये तो केवल मुँह का लड्डू खाता है। लेकिन सब कुछ है, बाबा ने सब भर दिया, भरपूर कर दिया। हद की कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। ब्रह्मा बाबा का पहला गीत कौन सा था? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। कितना नशा चढ़ गया कि अरे मिल गया जिसको ढूंढते थे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो अपना हो गया, और क्या चाहिए। इसलिए जब उसको पा लिया तो उसके बाद पाने की चाहना क्या रखेंगे, है कोई चाहना क्या। जहाँ इच्छाएं हैं वो इच्छाएं तो आत्मा को भटकाती हैं। बाबा उसको एक नाम देते हैं, सिंधी में कहते हैं रुन्नी का पानी, हिंदी में उसको कहते हैं मृग तृष्णा। मृग होता ना हिरण, उसको जब प्यास लगती है, तृष्णा माना प्यास लगती है, तो अगर रेत में है तो रेत में रेत की चमक को पानी समझता है। वो चमकती है, धूप पड़ती है तब तो समझता है वहाँ पानी है, भागता है उसके पीछे पानी पीने के लिए। लेकिन वो रण होता है, वहाँ पानी होता ही नहीं है, ना वृक्ष है ना पानी है। लेकिन वो दौड़ लगाता उसके पीछे पीछे, रेत को चमकता हुआ देखता है। तो जब बहुत दौड़ता है हाँफने लगता है, पानी नहीं मिलता है, तो उसके प्राण निकल जाते। तो बाबा भी अभी अपने बच्चों को कहते हैं कि संगम युग पर भी कई बच्चे इच्छाओं के गुलाम हो गए, अभी भी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे बाबा मिल गया और क्या चाहिए, सब कुछ बाबा ने दे दिया। अगर हम अपनी प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, क्या नहीं मिला है संगम पर ब्राह्मणों को, ज्ञान का इतना अखुट खजाना मिला। बाबा ने एक एक बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, नॉलेजफुल, सुदर्शन चक्रधारी, सब कुछ बाबा ने दिया। और जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास वो धन तो अपने आप आता है। सब धनों में श्रेष्ठ धन वैसे कहते हैं संतोष धन, संतुष्टता का धन है। एक कहावत है हिंदी में, गज धन गोजन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ऐसा है ना, सब धन धूल समान। और ब्रह्मा बाबा को नशा था प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा बाबा ने अपनी ऐसी सुंदर जीवन बनाई थी, नहीं तो इतना बड़ा जवहरी, सब प्रकार के साधन सुविधाएं एक सेकंड में सब त्याग कर समर्पित हो गया। और समर्पित होने के बाद इतनी संतुष्ट मणि बन करके रहा, साधनों के पीछे अपनी खुशी को गंवाया नहीं। सबसे बड़ी विशेषता, बाबा को सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है? ब्रह्मा बाबा को कौन सी सबसे प्यारी चीज लगती है? मुरली। और बच्चे प्यारे लगते हैं ना? नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को सबसे प्यारी अपनी स्थिति रही। कभी भी कोई परिस्थिति स्थिति को डगमग न करी। कलयुग में परिस्थितियां तो आएंगी, ऐसा कोई है कहे हमारे आगे कुछ नहीं आएगा? किसी के आगे तन की परिस्थिति आती है, किसी के आगे धन की आती है, किसी के आगे संबंधों की आती है, बहुत सारी परिस्थितियां कलयुग में अंतिम समय में आती ही हैं। लेकिन वो परिस्थितियां हमारी खुशी को, हमारी संतुष्टता को छीन न ले जाएं। इसलिए बहुत ध्यान देना कि हम सब ज्ञान और योग से अपनी स्थिति इतनी महान और श्रेष्ठ बना ले जो हर परिस्थिति में ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाए। धन क्यों इकट्ठा करते हैं लोग? धन क्यों इकट्ठा करते हैं? प्रॉपर्टी क्यों इकट्ठा करते हैं? आई वेल में अगर कोई बात होगी तो हम निश्चिंत रहेंगे, सुखी रहेंगे, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन विनाशी धन कई बार होते हुए भी, साधन होते हुए भी काम नहीं आते। जैसे कोविड के समय क्या नहीं था लोगों के पास, करोड़पति लोग भी रोड पर आ गए, संबंध होते हुए भी संबंधों का कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाए। एक छोटा सा पेपर एक दो साल में जो आया, एक व्यक्ति को एहसास करा दिया कि तुम कौन हो। न धन काम आया, न साधन काम आए, न संबंध काम आए, जहां थे वहीं खड़े हो गए। तो बाबा कहते संतुष्टता का आधार कोई ये साधन सुविधाएं धन नहीं है, जिसके पीछे तुम मृग तृष्णा के समान भाग रहे हो, अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी। कोई कोई बाबा के बच्चे बाबा का बनने के बाद भी इतना उसके पीछे लगे रहते हैं, ना अमृत वेले का योग कर पाते हैं, ना मुरली क्लास कर पाते हैं, ना अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्पेशल सेवा कर पाते हैं, ना योग कर पाते हैं। सारा दिन बिजी बिजी बिजी, किसके लिए कमा रहे हो भाई? क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए ना। तो ऐसे ही नहीं कि सुख शांति से रहो। लेकिन व्यक्ति को आज इतनी तृष्णाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, एक पूरी होती है सौ और खड़ी हो जाती हैं। और उनकी पूर्ति के लिए वो इतना सब कुछ करके कितना दुखी, कितना परेशान, कितना तनावग्रस्त है। और बाबा ने अपना बनाया और हम सब बच्चों को संतुष्ट मणि बना दिया। कुछ नहीं चाहिए, जितना है उतना बहुत कुछ है। सिर्फ अपनी अविनाशी प्राप्तियों को याद रखो, उनको रिवाइज करो। बाबा से हमें क्या क्या मिला है? सारी प्राप्तियों को अमृत वेले से रात्रि तक चेक करो। मुझे कौन उठाता है, कौन पालता है, कौन पढ़ाता है, कौन गाइड करता है, क्या मेरा भाग्य है? आप सब यहाँ आए हो ना, तीन दिन में एकांत में कभी मिले समय, वैसे तो क्लासेज भी हैं, सैर भी करेंगे, लेकिन जब समय मिले ना तो वाह रे मेरा भाग्य। वाह भाग्य मेरा, लिखना 10-15-20-50 पॉइंट लिख डालना, संगम युग पर कितना बड़ा मेरा भाग्य है, सबसे बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। एक वरदाता है और दूसरा भाग्य विधाता है। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। कहते जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो कहां सोया हुआ था, तो भगवान तो खुलेआम भाग्य बांट रहा है। आप अपने भाग्य को देखना, मैंने कितना जमा किया है, कितने जन्मों के लिए जमा किया है, 21 जन्मों के लिए या 84 जन्मों के लिए ही जमा कर लिया। हर एक के हाथ में भाग्य बनाने की कलम स्वयं भगवान ने दे दी है, सिर्फ उस कलम को यूज करना आना चाहिए, उल्टी कलम नहीं चला देना। भाग्य विधाता ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कलम दी है, श्रेष्ठ संकल्प करने की कलम दी है। हमेशा सकारात्मक चिंतन करो, जो कुछ करो उसमें जरा भी कर्तापन का भान न रहे, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरा नाम होना चाहिए। जहाँ ऐसी हद की कामनाएं हैं, जिसके अंदर भी ये कामनाएं होगी, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, चाहे उसको कितना भी दे दिया जाए, सब कुछ उपलब्ध हो जाए, लेकिन अगर हद की कामनाएं हैं, मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, मुझे कोई पद दिया जाए, मुझे कोई सीट मिले, उसके पीछे इंसान भाग रहा है और जब नहीं प्राप्त होता है तो असंतुष्ट हो जाता है। इतना सब बाबा दे रहा है। एक बार हमारी दादी जी बाबा के सामने बैठी थी, बड़ी दादी, तो बाबा को ऐसे हंसी में ही रमणीकता से दादी बोलती थी, कभी कभी चिट चैट करते थे, बाबा आप इन सबको इतने वरदान देते हो, रात रात भर वरदान देते हो, मेरे को तो आपने आज तक एक भी वरदान नहीं दिया। दादी को बाबा ने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, अरे बच्ची तुम तो वरदानों से पल रही हो, वरदान तो तुम्हारी पालना है, इसलिए तुमको मैं वरदान एक आधा क्या दूं, जिसकी जीवन ही वरदानी बन गई, जो वरदान देने वाला बन गया, उसको भगवान और वरदान क्या देगा। हम लोगों कभी इच्छा नहीं होती है कि सब भाग भाग के बाबा के सामने टोली लेने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, दृष्टि लेने जा रहे हैं, वो भी तो एक कामना है ना। और जरा भी कोई ने मना कर दिया, कोई ने रोक दिया तो मूड खराब, भगवान सामने बैठा है, मूड खराब करके डिस्टर्ब होकर के जा रहा है, खुशी गायब, और बाहर जाओ तो रोना धोना शुरू, कहाँ संतुष्टता। इतना लुटाया बाबा ने रात भर, मुझे व्यक्तिगत बाबा नहीं मिला, मुझे दृष्टि नहीं दी, मुझे टोली नहीं दी, पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके कई लोग अपने आप को असंतुष्ट कर लेते। अरे भगवान मिल गया, डायरेक्ट उनकी दृष्टि मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना मिल रही है, जो प्राप्ति हुई है उसको न देख करके हद की प्राप्तियों के पीछे इनको स्टेज पर बुला लिया, इनकी महिमा कर दी, इनको एक साल उड़ा दी, इनको गुलदस्ता दिया, मेरे को नहीं दिया, बस खुशी गायब। संतुष्टता इसी आधार पर है क्या, ऐसे संतुष्टता तो नहीं चाहिए ना। बाबा ने हम बच्चों को संतुष्ट मणि बनाया है, इतना कुछ दिया है। अगर आप अपनी प्राप्तियों को कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करो, ज्ञान का इतना स्पष्ट और अखुट खजाना दिया, गुणों का श्रृंगार किया, गुण मूरत बनाए एक एक बच्चे को, अमृत वेले से लेकर के अपने हर कर्म में गुणों को देखो, अंतर्मुक्ता है, सहनशीलता है, सरलता है, मधुरता है, नम्रता है, दिव्यता है, अलौकिकता है, 36 गुण तो यहाँ लिखे हैं, आप देखेंगे वहाँ गेट पर लिखे, उधर शांति स्तंभ के आगे। लेकिन हम तो कहते हैं हमारा नीचे से ऊपर तक श्रृंगार ही बाबा ने गुणों से कर दिया, इतना गुण मूरत बना दिया, गुणवान बना दिया, और क्या देगा, गुणों की खान दे दिया। जिसके पास ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का तो अखुट खजाना है, हर शक्ति से संपन्न है एक एक बच्चा। अगर सर्वशक्तिमान बाबा से ठीक योग है, कनेक्शन ठीक है, तो सब शक्तियों का वो मालिक है। चाहे जिस प्रकार की परीक्षा आए, वो शक्तियां उसको समय पर साथ देती हैं, हाजिर होती हैं। चेक करना, समय पर शक्ति हाजिर होती है, जरूरत है सहन करने की, जरूरत है सामना करने की, जरूरत है परखने की, निर्णय लेने की, लेकिन आवश्यकता के समय है लेकिन याद न रहे, सामने ना आए, तो खोने का क्या फायदा। बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे जो तुमको मैंने दिया है उसको रिवाइज करो, उसको रिपीट करो, उसको स्मृति में लाओ। और स्मृति स्वरूप बनने की बड़ी अच्छी विधि है, जो कुछ प्राप्ति हुई है उसका दान करो, दूसरों को देना सीखो। बाबा से वरदान लेना है तो सबसे अच्छी विधि दान करो, वरदान। दान करो तो वरदान मिल जाएगा। बहुत वंडरफुल पढ़ाई है हमारी, सीधी नहीं है। अगर हम दूसरों को शांति देंगे, प्यार देंगे, खुशी देंगे, सम्मान देंगे, तो हमारे पास कम हो जाएगा क्या? अपने आप बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा, वही वरदान बन जाएगा हमारे लिए। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, अच्छा अच्छी मनसा है, शुभ संकल्प चलते हैं, मनसा आपके कंट्रोल में है तो मनसा से शक्तियों का दान करो। आपकी वाणी अच्छी है, ज्ञान धन का दान करो। किसी न किसी को बाबा की दो बातें मीठी मीठी सुना दो। कर्म से गुणों का दान करो, ऐसे कर्म करो बाबा की याद में जो लोग कहें कितनी जवाबदारियां संभालते हुए कितना लाइट रहता है, कभी इसके चेहरे पर लगता ही नहीं कि थक गए हैं, डिस्टर्ब हो जाए। सेवाएं होती ना, अधिक काम होते हैं तो लगता है तो पता नहीं क्या इसको ड्यूटी मिली है। कर्म ऐसे करो जो लोग सीखें, इसलिए कहते कर्मों से गुणों का दान करो। तो अगर हम इन सब प्राप्तियों का दान करते हैं तो हमें वरदान मिलते जाते हैं, और वरदानी आत्मा जिसके पास सब कुछ है वो दाता बन जाती है, देना सीख जाती है, और देने वाला सदा माला माल रहता है, उसके पास कमी नहीं आती। भक्ति में भी दान का बड़ा महत्व है, करो दान मिले वरदान। और अगर कोई धन का भी दान करता है स्थूल में भी, तो भी उसके पास धन की कमी नहीं पड़ती, अपने आप कहीं ना कहीं से आता है। देखा है, अनुभव किया है कभी कि हमने दान किया, हमने सेवा में लगाया, तो बाबा ने इसके रिटर्न में पता नहीं कितना दे दिया। तो बाबा ने अपने बच्चों को खाली तो नहीं किया, भरपूर किया, एक एक बच्चे को संपन्न बनाया है। सिर्फ उसका सुमिरण करें, उसकी स्मृति स्वरूप बने तो संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कहेंगे पता नहीं इनको अधिक दिया मेरे को कम दिया। जहां किसी ने दूसरों से भेंट कर ली वहां उसकी प्रसन्नता गायब, वहां उसकी संतुष्टता खत्म। भेंट नहीं करो, व्यक्तिगत रूप में मुझे जितना मिला है उतना किसी को नहीं मिला है। अपनी प्राप्तियों को व्यक्तिगत याद करो। एक बार मैं एक जगह क्लास करा रहा था, कुछ समर्पित भाई बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही कहा अपना भाग्य लिखो। तो एक भाई मेरे को कहता है मैंने एक भाग्य लिखा है। हमने कहा बताओ क्या लिखा। कहता है जितने बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उन सब से हटके हम हैं। क्या कैसे हो? कहता है भाई जी भगवान ने डायरेक्ट हम बच्चों की सब जवाबदारियां उठा ली। न खाने की चिंता है, न कपड़े की चिंता है, न धोने की चिंता है, न बनाने की चिंता है, न लाने की चिंता है। हम तो उसकी गोदी में पल रहे हैं, तो जरूर हमने कोई अलग प्रकार की भक्ति की होगी, जो भगवान ने हमारी सब जवाबदारियां अपने आप ले लिया, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिला है सचमुच। अगर कोई इमर्ज करे, अपनी स्मृति में लाए, तो नैन गीले हो जाएंगे। इतना कुछ बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, और फिर भी वो अगर संतुष्ट न हो तो जरूर किसी से भेंट कर रहा होगा, इसके पास इतना है, इसको ये गाड़ी दिया, मेरे को ये चीज नहीं दिया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो, वहां संतुष्टता नहीं रह सकती। इसलिए सब ध्यान देना, बाबा हमेशा जब मुरली चलाते हैं तो 3 सर्टिफिकेट के लिए कहते हैं, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट। एक, मैं स्वयं से संतुष्ट हूं। अपने आप से पूछो, जो यहां बैठे हैं संतुष्ट आत्माएं, हाथ उठाओ थोड़ा, सच्चे दिल से बोलना, संतुष्ट। बहुत गहरी परिभाषा है। अगर हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से, संपूर्ण रीति से पालन कर रहे हैं, संयम पूर्वक हमारी जीवन है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के बंधन में हम बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, तब हम दिल से कह सकते हैं हम संतुष्ट हैं। जो बाबा चाहता है, मेरा हर कदम, हर संकल्प, हर बोल उसी अनुसार चलता है, संतुष्ट है। ऐसे ही सिर्फ बिना सोचे समझे हाथ तो सब उठा देते, हम संतुष्ट हैं, कौन कहेगा मैं नहीं हूं। लेकिन अगर एक बार विचार करके देखो, इस ब्राह्मण लाइफ में जो कुछ भगवान ने दिया है, अगर उस दी हुई प्राप्तियों को मैंने अपना बनाया है, तो मैं कह सकता हूं मैं संपन्न हूं। कई बार हम दूसरों को देने में तो संतुष्ट हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली के खाली हैं। ऐसे भी कई होते हैं, बाबा ने दिया है, हमने बांट दिया, दान कर दिया, लेकिन क्या उसको हमने अपने जीवन में उतारा है? अगर हम दूसरों को कह रहे हैं, संगम युगी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता अति इंद्रिय सुख है, क्या मैंने उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है? क्या मैंने उस योगियों की ऊंची स्टेज परमानंद की स्थिति का अनुभव किया है? बाबा कितनी गहरी गहरी बातें सुना देते, बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाओ, लाइट की ड्रेस पहन लो, ग्लोब पर खड़े हो जाओ, फरिश्ता बन करके सकाश दो, सर्च लाइट दो, अपनी शरीरी स्थिति में स्थित होकर के बाबा की करंट लो, सबको करंट दो। अनुभव है या सिर्फ ज्ञान है? मैं तो अपने आप से कभी कभी पूछता हूं कि क्या सचमुच मैंने सब अनुभव किए हैं? अगर मैंने नहीं किया तो दूसरों को क्यों कह रहा हूं? और जब ऐसा समय मिलता है तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लासेस सुन लिया, योग कर लिया, बहुत अच्छा, मधुबन बहुत अच्छा, वातावरण बहुत अच्छा, वो तो सब अच्छा है, लेकिन ऐसी कुछ अनुभूतियां करके जाओ जो कभी भी भूले नहीं, एक यादगार बन जाए कि मैं मधुबन में गया। मुझे याद आता है एक बार यहाँ पर जब हम शुरू में आए ना 72-71 में, तो ये जो शांति स्तंभ के साथ बिल्डिंग है ना इंद्रप्रस्थ, उस साकार बाबा की एक इच्छा थी कि शांति स्तंभ के सामने कन्याओं की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, कन्याओं की यहाँ ट्रेनिंग हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, और जो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगी उनके लिए ये भवन बने इंद्रप्रस्थ, जिसको नाम दिया शांति स्तंभ की साइड में जो बना हुआ है। तो जब हम आए तो बन के तैयार हुआ था, 72 में हो गया था, 73 में दीदी ने, हमारी दीदी मनमोहिनी ने हम सब की वहाँ भट्टी रखी, आठ आठ लोगों की केवल, हम लोग थे ही 50-25 थे, ज़्यादा नहीं थे मतलब। तो कहा आठ आठ दस दस भाई, आठ आठ दस दस भाई बहने मिलकर के योग करो, तीन तीन दिन, चार चार दिन भट्टी करो, बिल्कुल मौन भट्टी। और ऐसी वो भट्टी थी, अभी तक भूलती नहीं है। खाना पीना मिलता था लेकिन बिल्कुल सफ़ेद खाना, बहुत हल्का खाना एकदम, न तेल न मिर्ची न उसमें कोई हल्दी न मसाले, हल्की खिचड़ी बना दिया या हल्की दाल बना दिया मूंग की, एक आधा फुलका दे दिया बस हल्का। जितना लाइट रहोगे उतना योग अच्छा लगेगा। सुबह से शाम तक क्या वो स्थिति बनती थी, न बोलने की दिल करे न कुछ, सब के सब फरिश्ते जैसे घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। वो पहली भट्टी हम लोगों की 73 में इंद्रप्रस्थ में हमने अकेले में की थी। भट्टी करो, यादगार बन जाए। आत्मा जो है जैसी है, और मेरा बाबा जो है जैसा है, कम से कम एक बार तो अनुभव करो कि मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं। रियल को रियलाइज करो, सत्युग अपने अनादि और आदि स्वरूप में मेरा रियल रूप क्या होगा। संबंध थे, साधन थे, बहुत प्रकृति सुखदायी थी, एकदम प्योर आत्मा, कहीं पर भी फंसी हुई नहीं, न साधनों में न संबंधों में न किसी भी प्रकार के बंधनों में, आत्मा एकदम प्री स्वतंत्र, बिल्कुल प्योर रियल 24 कैरेट गोल्ड। कैसी स्थिति होगी सत्युग के अंदर। चलो अविनाशी अनादि रूप में तो परमधाम की स्थिति का वर्णन हम नहीं कर सकते, नीचे आके भले करो ऊपर वाले को तो पता नहीं है, लेकिन जब देवताओं ने जन्म लिया, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय आत्मा की रियल स्टेज क्या थी। और फिर धीरे धीरे चक्र में आते, शरीर के साथ पार्ट बजाते, संबंधों में आते, कलयुग के अंत में आते आते कितने बंधन, कितने हिसाब किताब, कहाँ कहाँ उसके संबंध बन गए, क्या क्या बना लिया। अब फंसी हुई आत्मा सूक्ष्म तारों में बंधी हुई। अब बाबा के तवड़ो मेरे साथ, बाबा को तो कोई बंधन है नहीं, न तन का बंधन है, न धन का बंधन है, न मन का, न संबंधों का, वो तो है ही उड़ता पंछी, जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए। हम सब बैठते हैं तो देखिए क्या एक सेकंड में उड़ सकते हैं, इतनी निर्बंधन स्थिति है, इतनी स्वच्छ पवित्र आत्मा बनी है। और नहीं है तो कहां कहां भी रगे हैं, किस तरफ मेरा लगाव है, किसी व्यक्ति से टकराव तो नहीं है, किसी से विशेष झुकाव लगाव तो नहीं है, अगर है तो वो खींचेगा अपनी तरफ। बहुत महीन चेकिंग करो एकांत में बैठ करके, अपने रियल स्वरूप को रियलाइज करो। मुझ सच हीरे में, सच्चे हीरे में मेरे हीरे की वैल्यू क्या है, कितना मूल्यवान हीरा मैं हूं, या अभी भी इसके अंदर कोई फ्लो है, दाग है जिसे मुझे मिटाना है, मेहनत करनी है, ईर्ष्या का, नफरत का, द्वेष भाव का, अहम का, बहम का, आवेश का, अलबेलेपन का, आलस्य का, बहुत सारे दाग हीरे के अंदर हैं जो हमारी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। मुझे उन्हें निकाल करके बिल्कुल प्योर सच्चा रियल गोल्ड बनना है, बहुत मूल्यवान हीरा बनना है, तपस्या करना है इसके लिए। तो आप कहेंगे संतुष्ट आत्मा स्वयं स्वयं से संतुष्ट है, जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है ऐसा मैं हूं, और नहीं हूं तो बन के दिखाऊंगा। संकल्प तो करो ना, आए हो ना, इसीलिए इतनी दूर से आए हो। हमारे विशाखापट्टनम वाले हाथ उठाओ, विशाखापट्टनम कितनी दूर से आए हो भट्टी करने, पहला ही टाइम शायद मिला होगा चांस, नहीं पहली बार ही मिला ना। और गुजरात से भी हैं क्या है? आपके साथ कितने हैं गुजरात और कौन स्टेट दूसरे हैं? विद्यानगर गुजरात के ना, गुजरात वाले हाथ उठाओ। चलो आप तो हिंदी समझ रहे हैं, उनको तो ट्रांसलेशन मिल रही है। तो आप सब पहला सर्टिफिकेट लेना बाबा से कि बाबा मैं आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हूं, हर नियम में मर्यादा में संयम में चलते हुए जैसा बाबा चाहता है ऐसा मेरा हर कदम है, हर संकल्प है, हर बोल है, तब हम कहेंगे ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। दूसरा, हमारा परिवार भी हमें सर्टिफिकेट दे, क्योंकि बिना परिवार के तो बाबा कहता है बच्चे क्या करोगे सृष्टि पर रह करके। कई कहते हैं ना बाबा तो बड़ा अच्छा है, बाबा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिवार के साथ चलना, रोज कुछ न कुछ टिक टिक होती है, हिसाब किताब आते हैं, कोई मनमत पर चलता है, कोई कैसा कोई कैसा, इनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के पास अपने परिवार का सर्टिफिकेट हो, मेरे जितने संबंध संपर्क में आए हैं वो कहें ये बहन ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर्टिफिकेट देंगे सब? लिया अपने परिवार का सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, अपने निमित्त टीचर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, अपने एरिया के जैसे हमारे विशाखापट्टनम में 4-5 सेंटर बड़े बड़े, मैं अभी तक प्रभावित हूँ आप लोगों के सेंटर से। क्यों? एक जगह हम जाते हैं जबकि अलग अलग कनेक्शन मैं जानता हूँ, लेकिन सब अपनी तरफ मिलजुल करके प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि हम 4 दिन के लिए आए तो ये नहीं कोई कहेगा भाई जी आप इनके पास आए मेरे पास अगले साल आ जाना, नहीं आप आए हैं तो हम सब मिल करके मिलेंगे आके। ये सर्टिफिकेट है इनको, जबकि कोई हैदराबाद के कनेक्शन से है, कोई बॉम्बे कनेक्शन से, कोई कहीं कनेक्शन से, सब अलग अलग चलते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह जाओ तो सब लाभ ले लेते हैं। एक सेवा करता है तो सबको निमंत्रण देता है। पता है आप लोगों को, गुजरात वालों को मैं बता रहा हूं, एक बार हमने विशाखापट्टनम में किसान सम्मेलन किया, सोमेश्वरी कहाँ बैठी है, सोमेश्वरी बैठी ना, किसान सम्मेलन किया और उस किसान सम्मेलन में पहली बार 9,000 किसान आए थे। अभी तक मेरे को दृश्य नहीं बोलता, 9,000 किसान आए और सभी सेंटर जबकि बिल्कुल अलग अलग हैं, क्या मेहनत की होगी, सब ने सहयोग दिया, कोई ने गाड़ियां दिया, कोई ने भोजन का प्रबंध किया, सभी किसानों को फ्री रूप में पौधे बांटे, कोई ने मेरी ट्रांसलेशन की अलग अलग सेंटर के साथ, लेकिन सब ने मिलके किया, तो ये कितनी बड़ी सेवा उस समय हुई थी, अभी तक याद रहता है। ये हमारे ब्राह्मण परिवार की शोभा है, इसलिए सब ध्यान दो कि परिवार परिवार है। संस्कार तो अलग होंगे ही, संस्कार तो दीदी दादी भी दो थे, लेकिन कभी नहीं किसी ने कहा कि दो हैं, शरीर दो हैं आत्मा एक है, ऐसा होता है क्या? लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों को मिलाया, एक ने कहा दूसरे ने माना, अपने को झुकाया, नम्रता का अवतार बन करके रहे। इसलिए संस्कार तो एक नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि आत्मा की जर्नी अलग अलग है, उसके कर्तव्य, उसका संग, उसकी पढ़ाई, उसका भोजन, उसका वातावरण अलग पलाया हो, उसके संस्कार हमारे संस्कारों से नहीं मिलेंगे। संस्कार एक हो जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे? संभव नहीं है, संस्कार एक नहीं होंगे, लेकिन अनेक प्रकार के संस्कार होते हुए भी मुझे उस भिन्नता को मिटाना है, एकता में आना है। इसलिए बहुत नम्रता से, सरलता से झुक करके, एक दूसरे को सत्कार दे करके, हमें उसका सर्टिफिकेट लेना है। परिवार की संतुष्टता का दूसरा सर्टिफिकेट उन बच्चों को मिलता है जो सबको सत्कार देना जानते हैं, दिल से देना, ऊपर ऊपर से नहीं, मांगना नहीं, ये मुझे दे कहीं कहे ना, ये तो कभी झुक के बात ही नहीं करती, ये तो कभी मुझसे मोम शांति भी नहीं करती, मैं क्यों झुकूं, मैं ही झुकती रहूं क्या? नहीं, वो झुके या ना झुके, दादियों ने हम सबको यही सिखा दिया पहले से, जाकर ओम शांति झुक करके नमस्ते करके सॉरी कर लो। हमारे टीचर्स को दादी इतना प्यार से सिखाते थे, अरे सारी करो दीदियों, सारी करो, साड़ी नहीं खराब होगी, हार मान लो, हारमनी हो जाएगी, हारमनी हारमनी कर रहे हो लेकिन हार ही नहीं मानते हो, झुकने में क्या जाता है, झुक झुक सिख सिख मर मर, तब सर्टिफिकेट मिलता है, इतना जल्दी नहीं मिलता है संतुष्टता का सर्टिफिकेट। परिवार का कोई भी सदस्य मेरे से असंतुष्ट ना हो। एक दिन क्या हुआ, यही स्टेज थी, ये स्टेज उस समय नहीं बनी थी लेकिन बाबा की गद्दी यहाँ लगती थी, ओम शांति भवन नहीं बना था और मैं यहाँ बैठता था इधर लिखने के लिए, ये भी टेबल नहीं थे, ऐसे नीचे ऐसे बैठते थे। तो बाबा विदाई देने के समय दीदी और दादी को सामने बुलाते थे, विदाई जब भोजन करना है बाबा को भोग खिलाते हैं ना, तब तो एक बार बाबा बहुत प्यार से मुस्करा के दादी की तरफ देख के कहते हैं, दादी, बाबा भी दादी बोलता, दादी आपसे सब संतुष्ट हैं, आपसे सब संतुष्ट हैं। तो दादी कोई जवाब नहीं दे, चुप। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, फिर जब देखा बाबा छोड़ ही रहा है तो दादी बहुत प्यार से बोलती है, बाबा ये सर्टिफिकेट मैं कैसे अपने को दूं कि मेरे से सब संतुष्ट हैं, आप सर्टिफिकेट मुझे दो कि दादी आपसे सब संतुष्ट हैं। तो बाबा बहुत प्यार से बोले, जो सीट पर होते हैं, जिनको कोई बात का फैसला लेना होता है, जहां निर्णय देना होता है, वहां से सब संतुष्ट नहीं हो सकते, समझ रही मेरी बात? मान लो आप हम इस पोस्ट पर हैं, तो एक तरफ अगर हमने कोई फैसला दे दिया कि ये राइट है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, तो कहेगा इनको सुनाई सुनी सुनाई पर फैसला दे दिया, इनको कोई ने भर दिया हमारे लिए, उनकी तरफ चले गए, हमारी सुनी नहीं, एक नाराज होगा, दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा, एक संतुष्ट होगा, दूसरा असंतुष्ट होगा। तो बाबा ने कहा कि बाप जानता है कि आपसे 96-98% तक सभी संतुष्ट हैं, लेकिन 2-4% जो नहीं है उसका कारण है वो अभी उस हद की समय को देख रहे हैं, उस समय को देख रहे हैं जब आपने निर्णय लिया, लेकिन आगे चल करके वो महसूस करेंगे जो दादी ने निर्णय लिया वो राइट था, इसलिए समय आने पर सब संतुष्ट हो जाएंगे, सदा संतुष्ट नहीं रहते। तो परिवार के बीच में जो कोई मान लो सेंटर इंचार्ज है, अगर एक व्यक्ति ने बहुत पैसे का यज्ञ का अच्छा सहयोग दे रहा है तो नेचुरल है कि आएगा तो उसको सम्मान से बिठाएंगे, खिलाएंगे, उससे बात करेंगे, और दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा तन मन धन से और वो अपेक्षाएं रखता है कि इसको इतना दिया जाता है, मेरे को क्यों नहीं दिया जाता है, कैसे देंगे, मिल ही नहीं सकता, आपने कुछ किया ही नहीं यज्ञ के लिए, और जो कर रहा है दिन रात नेचुरल है। आज हमारे सिंधी लोग यहां आते हैं यज्ञ के अंदर, एक बार हमारी दीदी मनमोहिनी जी की, दीदी की बहुत बड़ी फैमिली बॉम्बे में थी और बहुत गुप्त रीति से दीदी की लौकिक भाभी यज्ञ में सहयोग देती थी, जब बेगरी पाठ चल रहा था, यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं था और उसको बहुत प्यार था, खास करके दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर यहां रहती थी, तो उसको ये था कि मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, थी बहू लेकिन उसको ये था मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए छिप छिप करके अपने पति को बिना बताए हुए भी यज्ञ में वो कुछ न कुछ सहयोग भेजते थे गुप्त रीति से। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए और दीदी और दादी सीट पर आई, तो एक बार दादी ने कहा, दीदी कमला भाभी को बुलाना चाहिए मधुबन में, एक बार निमंत्रण देना चाहिए, उसने बहुत यज्ञ को मदद की है। तो दीदी ने कहा, हाँ निमंत्रण देते हैं, आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो 73-74 की बात है, उसको निमंत्रण दिया गया। मैं था यहाँ, वो आ गई, कहती मैं आऊंगी। लेकिन आएगी तो उसके लिए ऐसा कमरा नहीं है घर में, लेटरिन बाथरूम अलग हैं और 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। केवल दीदी और दादी के दो ही कमरे थे जिनके साथ कंबाइंड बाथरूम था। तो दीदी तो बड़ी आयु थी और दीदी खाली करेगी तो अच्छा भी नहीं लगता कि लौकिक के लिए खाली कर दिया। तो दादी ने कहा, दीदी मैं जनरल में सो जाऊंगी, मैं जनरल में नहा लूंगी, मैं अपना कमरा उसके लिए खाली कर देती हूँ, क्योंकि उसने समय पर साथ दिया है। तो दीदी दादी ने क्या किया, अपना कमरा खाली करके और जनरल में 10-12 बहनों के बीच में जाके सोई, दो तीन दिन रहे। तो लोगों के प्रश्न उठे, वो तो ज्ञान में नहीं चलती, वो तो इतनी पवित्र भी नहीं रही, और उसके लिए दादी ने इतना सम्मान दिया, तो सम्मान नहीं मिलेगा कैसे लोगों को। जिन्होंने यज्ञ को समय पर सहयोग दिया, ऐसे लोग बाबा के घर में आएंगे तो उसको सम्मान नहीं देंगे क्या? समय की बलिहारी होती है। और ऐसे ही अगर सेंटर्स पर बहने कोई की खातरी कर रही हैं, हाँ कोई लगाव झुकाव की खातरी वो अलग बात होती है, वो तो नेचुरल है, वातावरण खराब करेगा। लेकिन अगर उसने कुछ यज्ञ के लिए, मधुबन के लिए, सेंटर्स के लिए स्पेशल कुछ सहयोग दिया है तो आएगा तो पानी तो पूछेंगे ना, बिठाएंगे तो उसमें ईर्ष्या करे कोई, इनको पूछा जाता मेरे को नहीं, संतुष्ट ना हो, क्लास में आना बंद कर दे, वो वातावरण खराब करे, तो उसका अपना पाप चल रहा है, उसका दोष है, उसको पता ही नहीं है चीज। लेकिन संतुष्टता के लिए हम सबको बहुत बेहद की दिल रखनी पड़ेगी, बेहद की दिल समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। आज बड़े बड़े सिंधी लोग आते हैं, बाबा स्टेज पर बैठा है, दूसरों को जो पक्के स्टूडेंट्स हैं उनको आने का चांस नहीं बाबा के आगे, और वो आते हैं बाबा से टोली लेते हैं, बाबा उनको माला पहनाता है। सोचने वाला सोचेगा इनकी खातरी क्यों हो रही है, अरे भाई वो यज्ञ को चला रहे हैं, यज्ञ के लिए उन्हें उछावन है, कहीं भी हैं कैसे भी हैं। तो इसलिए कई बातों को बेहद दृष्टि से देखना चाहिए, और देख करके अपने मन की स्थिति को डगमग नहीं करो, सबको दिल से रिस्पेक्ट देना सीखो, तब संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो परिवार का सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत कुछ अंदर की स्थिति और ज्ञान समझ चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे परिवार में, ऐसे करता वैसे करता, क्यों करता है उसको न समझ करके। अपेक्षाएं अगर हमारी रहती हैं परिवार में तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। अपेक्षाओं को कम करो, कहते ना इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और बाबा का सर्टिफिकेट तीसरा नंबर, स्वयं का, परिवार का और बाबा का। बाबा भी कहे हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट दे दे संतुष्टता का, कैसे मिलेगा बाबा का सर्टिफिकेट, कैसे मिलेगा? बाबा को केवल एक चीज अच्छी लगती है, वो है सच्ची दिल। जो है मेरा बच्चा जैसा है वो सच्चा है, सच्चाई बहुत बाबा को प्रिय है। छिपाना नहीं, अंदर एक बाहर दूसरा, बाहर से योगी अंदर का ढोंगी, क्या बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा जो हूं जैसा, मैं आपकी आज्ञा पर, आपकी श्रीमत पर चल के दिखाऊंगा। अगर बाबा के सच्चे सपूत बच्चे बन के रहते हैं और सच्चाई से बाबा को सुनाते, आज विदेशियों बाबा इतना प्यार क्यों करता है, बहुत सच्चे हैं, जैसे हैं बता देते हैं, बाबा मेरे अंदर ये है, ऐसे नहीं झूठा कहेंगे, बाबा मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये संस्कार है, आप मुझे हिम्मत देना, आप मुझे शक्ति देना, पार हो जाएंगे। बाबा उन पर बहुत खुश होता है, कहते ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो भगवान से संतुष्टता का सर्टिफिकेट उसे मिलता है जो सच्चा और साफ है। तो आप सब तीनों सर्टिफिकेट मधुबन की भट्टी से लेके जाएंगे, स्वयं का सर्टिफिकेट, अपने परिवार का, हरेक की नब्ज को समझ करके, अपने आप को मोल्ड करके, सबके साथ मिलनसार बन करके चलना। नहीं, इसका संस्कार ठीक नहीं, मैं इसके साथ नहीं चल सकती। कई बार ऐसी नेचर होती है लोगों की, मैं इसके साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन दादियों ने चल के सिखाया है, दिखाया है। कैसी भी हो, देखो हमारी मोहिनी दीदी थी, मोहिनी बहन रहती थी दादी के साथ। दादी जी पंखागढ़ चल जाता था तो छींक आने लगती थी, उनको जरा भी ठंडी महसूस सहन नहीं होती थी। और मोहिनी बहन जी इतना से उनको पंखा एसी इतनी गर्मी थी उनके, जो सब कुछ यही होता था। और दोनों एक ही कमरे में रहते थे। ऐसा नहीं कहा मोहिनी तुम बाहर चली जाओ या मैं बाहर चली जाऊं, नहीं। जब देखती थी गर्मी है लेकिन पंखा चलेगा तो मुझे छींक आएगी, तो मोहिनी तुम ऐसा कर पंखा जोर से चला ले, सो जा, मैं अपने ऊपर रजाई डाल लेती हूं। स्वयं को मोल्ड किया, ऐसे नहीं निकाला ये किया वो किया, नहीं। संस्कार अलग, प्रकृति अलग, हर प्रकार का अलग, लेकिन अलग होते हुए भी उन्होंने अपने आप को मिलनसार बनाया, मिलाया, झुकाया, संस्कार मिलन किया, तब तो इतना बड़ा यज्ञ आगे बढ़ा है। इसलिए हम सब मिलजुल करके आपस में एक दूसरे को समझ के, जहां भी रहो जिस हालत में रहो, इसके साथ मैं नहीं रह सकती हूं, अगर ये संकल्प किया तो जहां जाओगे वहां भी उससे बड़ा पेपर आ सकता है। कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में लटका, न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए ध्यान देना, स्थान परिवर्तन करने से परिस्थितियां बदलती नहीं है, हम सबको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो आप बाबा के बच्चे हो, सब संतुष्ट मणियां बन करके, स्वयं संतुष्ट, परिवार संतुष्ट, बाबा संतुष्ट, तो हम हैं संतुष्ट मणि। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। अनेकानेक एग्जाम्पल अपने अनुभवों से भाई सब ने हम सब के सामने प्रस्तुत किए, और हम सब आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम सब मधुबन की पवित्र भूमि से संतुष्ट मणियां बनकर के ही बाहर निकलेंगे। जैसे बाबा हमको देखना चाहते हैं, हम बाबा को वैसा बन के दिखाएंगे। किन शब्दों में आपका आता तो है सबको गीत, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जोरदार तालियों से भाई साहब को थैंक्स।
प्रभु का हो